प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अर्पा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। इस कड़ी में आज सुनिए काउंसलर और डीपीएस डॉक्टर रश्मि द्विवेदी का प्रेरक उद्बोधन।
द्वारा दक्षता विकास कार्यक्रम के तहत जो सत्र चल रहे हैं, विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का तनाव झेलने के लिए कैसे उनको उस समय उस परीक्षा परिणाम को सकारात्मक रूप से ग्रहण करना है, लेना है, इसके लिए ऑलरेडी 6 सत्र हो चुके हैं। 7वें सत्र में मैं डॉक्टर रश्मि द्विवेदी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी विभाग बीपीएस बिलासपुर, आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं प्रशासन को धन्यवाद भी देती हूँ कि बच्चों की परवाह करते हुए, उनकी चिंता करते हुए जिस तरह से ये चीजें की जा रही हैं ताकि उनको एक मॉरल सपोर्ट मिल सके, न केवल परिवार का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, साथियों का, बल्कि हम भी उन सबके साथ खड़े हुए हैं, यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें ना केवल विद्यार्थी होंगे, साथ ही साथ माता पिता भी होंगे, ना केवल वो माता पिता जिनके अपने बच्चे इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, बल्कि वो माता पिता भी शामिल होंगे जिनके बच्चे आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है जो हर विद्यार्थी, ना केवल विद्यार्थी बल्कि मेरे जैसे जो माता पिता हैं, शिक्षक हैं, हम सबके लिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कि ये बात हमेशा याद रखिएगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप यदि अपने मन में सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि जीत मेरी ही होने वाली है, तो निस्संदेह जीत आपके कदमों में होगी। लेकिन यदि आप पहले ही उदास हैं, निराश हैं, आपको लग रहा है कि मैं इस स्थिति का सामना कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो फिर आपकी हार भी हो सकती है। एक चीज हम हमेशा सोचते हैं, सुनते चले आ रहे हैं कि तनाव अच्छा नहीं होता, तनाव से दूर रहना चाहिए, लेकिन मेरी जो राय है वो थोड़ी सी अलग है कि न केवल परीक्षा को लेकर और उसके परिणाम को लेकर जो तनाव आपको जिम्मेदार बनाए वो तनाव अच्छा होता है। यदि आप थोड़ा सा भी तनाव नहीं लेंगे, हो सकता है आप लापरवाह हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप थोड़ा सा तनाव लेते हैं, जो उसका सकारात्मक पक्ष है कि आप थोड़ा तनाव ले रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपका जो दिनचर्या है वो अनुशासित है। यदि आपको लगता है थोड़ा तनाव लेने से आप पढ़ाई में ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, यदि आपको लगता है थोड़ा तनाव ले लेने से आप ज्यादा सिंसियर हो जाते हैं, तो उतना तनाव आपके परीक्षा परिणाम को, आपके भविष्य को संवारेगा ही। लेकिन इतना तनाव नहीं लेना है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आपको एंग्जाइटी इश्यूज होने लगे, आपको निराशा या डिप्रेशन होने लगे, या आपको लगने लगे कि शायद जो अपेक्षाएं मैंने स्वयं से की थी मैं उनकी पूर्ति नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तनाव से दूर रहने का जो सबसे बेहतर तरीका है वह यह है कि खुलकर बात करना सीखिए। आप अपने आप को जिनके भी सबसे ज्यादा करीब पाते हैं, वो करीब आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो करीब आपके ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो गुरुजन हैं, आप बहुत सारा समय, दिन का लगभग 8 घंटा आप अपने गुरुजनों के साथ बिताते हैं, तो हो सकता है कि आपके गुरुजन हों जो आपके बहुत करीब हों, जिनसे आप खुलकर अपनी सारी बातें कह सकते हो, या कोई ऐसा मित्र दोस्त है आपका जिससे आप हर चीज बांट सकते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अपने दिल की हर बात खुलकर कहना सीखिए। आप देखेंगे कि यदि आप खुलकर अपने मन की बात कह लेते हैं तो हो सकता है जिनसे आप खुलकर बात कह रहे हैं वो आपको सटीक सुझाव दे, वो आपको ये बता पाए कि उस दौर में सबसे सार्थक पहल आपके द्वारा कौन सी की जा सकती है। यहां तक कि यदि आपको संकोच होता है कि मेरे मन में ये उथल पुथल मची हुई है, मैं कैसे अपने मन की बात कहूं, आप डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। आप देखिएगा, यदि आप डायरी लिखते हैं तो जो मन में आपके उथल पुथल मची हुई है, जो आप विचारों में जकड़े हुए हैं, अपनी उस जकड़न को आप डायरी लेखन के माध्यम से भी दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। फिर अगली चीज जो आती है वो ये कि अपनी तुलना दूसरों से मत करिए। हो सकता है कि मैं किसी और चीज में बहुत बेहतर हूं, मेरा ही अपना भाई बहन किसी और चीज में बेहतर हो सकता है, मेरे मित्र जिनके बीच में उठती बैठती हूँ वो भी किसी और चीज में बेहतर हो सकते हैं। तो तुलना यदि आप करेंगे तो आप दुखी ही होंगे। यहाँ मेरा माता पिता से भी अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों की तुलना दूसरों से न करें। आपके दो बच्चे हैं तो उन दोनों की भी तुलना आपस में मत करिए। आपके अपने बहुत करीबी रिश्तेदार हैं जिनके अपने बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं मान लीजिए पढ़ाई में, पर आपका बच्चा पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है लेकिन वो खेलता बहुत अच्छा है, तो कृपया उसकी तुलना ना करें। उसे ऐसे उदाहरण ना दें कि देखो तुम ये जो है फला फला जेई में सेलेक्ट हो गया, या उसने नीट क्वालिफाई कर लिया, या उसे गोल्ड मेडल मिल गया है, और आप अपने बच्चे से कहें कि तुम्हें देखो तुम्हारे लिए फर्स्ट डिविजन लाना भी बहुत मुश्किल है। मेरा अनुरोध है कि कृपया तुलना करके अपने बच्चे को इस समय किसी गला काट प्रतियोगिता का हिस्सा ना बनाएं। उसे इस प्रतियोगिता में एक योद्धा की तरह उतारें कि वह इसका सामना करना सीखे। जरूरी नहीं है कि हर बार वो सफल ही होगा, कई बार असफल होगा, कई बार निराशा हाथ लगेगी। एक माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चे को हमेशा यह सिखाइए कि चाहे जीवन में जो कुछ भी हो, अच्छा बुरा बदतर, हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप अपने बच्चे के मन में यह विश्वास जगाइए कि जब भी आप पीछे पलट कर देखोगे आप हमें अपने सामने पाओगे, साथ खड़ा पाओगे, आप अकेले कभी नहीं हो। एक माता पिता होने के नाते आप अपने बच्चे के मन में यह विश्वास जगाइए कि आपका प्यार जो है उसके प्रति वह अंक पर आधारित नहीं है, कि यदि वो अबव 90 लाता है तो वह आपका प्यारा राजदुलारा बच्चा है, और यदि वो 60% मार्क्स लेकर आता है तो आपकी इज्जत पर बट्टा लग गया या आपको अपने समाज में दोस्तों के बीच शर्मिंदगी होगी। ये एहसास मत दिलाइए। आपका बच्चा आपके लिए कोई ट्रॉफी नहीं है जो आपको दूसरों के बीच लेकर जाना है। वो बच्चा हर अच्छे बुरे के लिए आपकी तरफ आशा भरी नजरों से देखता है, और मैं चाहती हूँ कि जब वो आपकी तरफ आशा भरी नजर उठाकर देखे तो आप उसको ये महसूस हो कि मेरे माता पिता भी मेरी ही ओर देख रहे हैं, उनके लिए मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मैं उनका अपना बच्चा उनके लिए सबसे कीमती है, मैं सफल हूं या असफल हूं इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विद्यार्थी को और माता पिता दोनों को याद रखना है कि एक परीक्षा परिणाम आपकी योग्यता का आकलन कभी नहीं कर सकता। आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। मैं चूंकि हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हूं तो आप हिंदी साहित्य से जुड़े लोगों को पता होगा कि प्रेमचंद से महान युग प्रवर्तक, कथावाचक, कथा सम्राट इस संसार में कोई नहीं हुआ। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेमचंद गणित विषय में बेहद कमजोर थे, और जब तक 11वीं की कक्षा में गणित विषय कंपलसरी था प्रेमचंद 11वीं की कक्षा पास नहीं कर पाए। जब 11वीं की कक्षा में गणित विषय वैकल्पिक हो गया और दूसरा विषय लेने की छूट मिली तब प्रेमचंद 11वीं की कक्षा पास कर पाए। अब आप मुझे बताइए कि क्या प्रेमचंद को 11वीं की कक्षा पास करना अधिक महत्वपूर्ण था, या 11वीं की कक्षा वो पास नहीं भी करते तो क्या मैं और आप उनका जो नाम जानते हैं उस नाम में, उस लोकप्रियता में, उस कथावाचक के स्थान में कहीं कोई कमी रह जाती, एक भी कमी नहीं रहती। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि अंक आपकी योग्यता का मापदंड कभी नहीं हो सकते। आजकल के बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है कि जितने नामचीन लोग हैं सारे या तो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्कूल या कॉलेज की शिक्षा अधूरी छोड़ देनी है। शिक्षा जो है वो आपका सोचने का दायरा बड़ा कर देती है। शिक्षा जो है वो आपको जिंदगी को एक नए तरीके से देखने का रवैया देती है, सकारात्मक रवैया। और ये रवैया निसंदेह आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। अब यदि मान लीजिए कि आपका परीक्षा परिणाम ईश्वर न करे इच्छा के अनुकूल नहीं आया, आपने जो सोच रखा था उसके अनुकूल मान लीजिए नहीं आया, तब आप क्या करेंगे? तब आप विकल्पों पर विचार करेंगे। यदि आपको लगता है कि मैंने जो राह चुनी है ये राह सही राह है, तो आप उसके विकल्प पर जाइए कि क्या मुझे पुनः इस परीक्षा में शामिल होने की आवश्यकता है। या आपको लगता है कि माता पिता के दबाव में या मेरा बेस्ट फ्रेंड जो था वो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उसके साथ मेरे ऊपर भी दबाव था कि मुझे इसी परीक्षा में शामिल होना है, ऐसा तो नहीं था। तो यदि आपका परीक्षा परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप अनुकूल नहीं आता है तो उसके विकल्पों पर विचार करिए कि दूसरा कौन सा विकल्प है जो लिया जा सकता है। माता पिता से एक अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी तुलना भी अपने बच्चों से ना करें। मैं और आप जब बच्चे थे तो वातावरण बिल्कुल दूसरा था। हम ज्यादा आज्ञाकारी बच्चे हुआ करते थे। साथ में एक ये चीज भी था कि हमारे समय में डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं था, ना तो मोबाइल था ना लैपटॉप था, टीवी बहुत सीमित घरों में हुआ करता था, सोशल मीडिया का दबाव नहीं था, पीयर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं हमें धैर्य सहनशीलता बहुत ज्यादा थी। अब आप मैं यदि ये अपेक्षा करूं कि जो गुण मुझ में थे या मेरी पीढ़ी के लोगों में थे वही गुण मेरे बच्चों में चला जाएगा तो ये गलत है। आज का जो बच्चा है वो जिस परिस्थितियों से घिरा हुआ है, जिस वातावरण में वो पल बढ़ रहा है, वो मेरे और आपकी परिस्थितियों से बिल्कुल अलग है। तो स्वाभाविक है कि उसका रिएक्ट करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। फिर आप देखिए, मैं और आप जब छोटे थे तो सुविधाओं की कमियां थी। आज बच्चे के पास असंख्य संसाधन हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं उसके पास। तो जहां सदुपयोग है वहां दुरुपयोग भी होगा। आप बच्चे को हर दिन उसके साथ बैठिए, कम से कम अपने टीनेज बच्चों के साथ। छोटे बच्चों तक माँ बाप बड़ा ख्याल रखते हैं कि होमवर्क भी साथ में बैठकर करा रहे हैं, आज टीचर ने डायरी में क्या लिखकर देखा, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चा छठी सातवीं में आता है, अक्सर माता पिता ट्यूशन लगा देते हैं कि भाई तुम्हारी जो ये पढ़ाई है ये हमारी पढ़ाई से बिल्कुल अलग थी, ये मुझे समझ में नहीं आता तो तुम ट्यूशन चले जाओ। अब आप बताइए कि वो टीनेज बच्चा एक घंटा भी आपके साथ खुलकर बात नहीं कर रहा है। तो जब वह खुलकर बात नहीं करेगा तो वो अपने मन की उलझन, मान लीजिए आज उसका दिन स्कूल में अच्छा नहीं बीता, किसी टीचर से उसे डांट पड़ गई कि उसने कार्य अधूरा रखा था, वो ये बात घर आकर जब तक आपसे कहेगा नहीं उसका मन हल्का कैसे होगा। शायद वो आपके कंधे पर सर रख कर रोना भी चाहता हो। आप देखेंगे जैसे ही बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आते हैं वो अपने माता पिता से अपने विचार बांटना लगभग बंद कर देते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आकर तनावग्रस्त ना हो तो इसकी नींव तो आपको जब वो पहली दूसरी में है तभी रखनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि बच्चा 10वीं में आया है और मैं सीधा उससे बात करूं और आज के आज वो मुझे अपनी मन की सारी बातें बता देगा तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं 19 साल से डीपीएस में हूं, अक्सर पीटीएम में पेरेंट्स आते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम बच्चा आपको जितनी बात बताता है हमें नहीं कहता। क्यों? क्योंकि शायद मेरे पास उसको वो कंफर्ट जोन मिल रहा है, शायद उसको ये बात पता है कि जब हम ये बात मैम से कहेंगे तो मैम जजमेंटल नहीं होगी, हमें उस तरह से नहीं देखेगी कि मैं सही या गलत हूं, शायद वो सिर्फ सुनेगी। तो माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आप बच्चे को पर्याप्त समय दीजिए, उसके साथ उसके अच्छे बुरे में सहभागी बनिए, अपने टीन एज की जो समस्याएं थी या उस समय जो हार्मोनल चेंजेस आप में हो रहे थे वो बांटिए उसके साथ। और जब आप देखेंगे कि आप अपनी सारी बातें उसको बताने लगेंगे तो धीरे से वो अपने मन की सारी बातें आपको बताना शुरू कर देगा और ये नींव डालेगा कि आपका बच्चा ताउम्र कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। एक परीक्षा परिणाम क्या बात है, हजारों परीक्षा परिणाम आ जाएं, वो साहस के साथ उसका सामना करेगा। फिर पिछले कुछ समय से मेरा ध्यान जाता है कि बच्चे, उसमें से ज्यादातर लड़कियां, मुझे लगता है आप अपने आसपास आंख उठाकर देख लीजिए, केवल 1% लड़कियां होंगी जो मैदान में खेलने जाती हैं। ज्यादातर बच्चे खेलने ही नहीं जाते। हमारे समय में नियम था कि कल भी यदि आपकी परीक्षा है तो आज आपको 1 घंटा मैदान पर बिता कर आना है। साइंस ये बात साबित करता है कि जब आप मैदान में बिना कुछ और सोचे सिर्फ खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, आप देखिए जितना ये तनाव, निराशा, एंजाइटी है सारा दूर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे का मैदान में बिताने का समय था वो समय बच्चा कोचिंग सेंटर और ट्यूशन में बिता रहा है, तो जब वो ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में अपना समय बिता रहा है और खेल के मैदान में पैर नहीं रख रहा है तो उसे जितनी समस्याएं जीवन की हैं वो आएंगी ही आएंगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहे तो उसके लिए उसे शारीरिक तौर पर स्वस्थ रखना भी बेहद जरूरी है। ये बात ध्यान रखिए कि आप दुनिया की कितनी भी पढ़ाई करा लीजिए उसको, लेकिन मानसिक तौर पर यदि वह स्वस्थ नहीं है तो परीक्षा परिणाम उसके अनुकूल नहीं आएंगे। यहाँ एक छोटा सा सुझाव और देना चाहूंगी मैं कि हमारे यहाँ मेडिटेशन जो है उसकी सीख हम बच्चों को आमतौर पर नहीं देते। कक्षा 7वीं 8वीं का बच्चा भी मेडिटेशन करना सीख जाता है। ये कहीं नहीं लिखा कि बच्चा पहले दिन ध्यान लगाने बैठे और सीधा 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसका ध्यान लग जाए। बेशक शुरू में वो 1 मिनट 2 मिनट भी यदि शांत एक जगह पर बैठ जाता है तो आप यकीन मानिए 10वीं कक्षा में आते आते वो कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान लगाना सीख जाएगा। और ये ध्यान जो है मेडिटेशन वो उसको दोहरा फायदा देगा। एक, हम देखते हैं आजकल बच्चों में एकाग्रता की बहुत अधिक कमी है, बच्चे एकाग्र नहीं होते। आप उनको 40 मिनट एक जगह बिठा लीजिए, वो 10 बार पूछेंगे मैम पानी पी लें, मैम वॉशरूम होकर आ जाएं, फिर अपने किसी दोस्त की शिकायत करेंगे कि इसने मेरी पेन ले ली। आप सोचिए जो बच्चा 40 मिनट एक पीरियड नहीं बैठ पा रहा वो दिन का 6 से 7 घंटा स्कूल में एक सीट पर बैठकर कैसे बिताएगा। फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो घर आकर भी चेयर टेबल पर बैठ जाए, होमवर्क भी कर ले, सेल्फ स्टडी भी कर ले, कैसे? यदि एकाग्रता की कमी है तो वो इन चीजों को कभी नहीं कर सकता। तो बेहतर होगा कि आप अपने बच्चे को मेडिटेशन करना, ध्यान करना सिखाइए। यह ध्यान परीक्षा के समय भी उसमें आप देखेंगे सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। वो आपसे कभी आकर नहीं कहेगा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे निराशा हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो 3-4 साल से मेडिटेशन करता चला आ रहा है तो उसका अपना विल पावर बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। वो अपने आप इतना डील करना सीख जाएगा कि आप उसको कहेंगे कि बाप रे तेरा पेपर है, तुझे डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये चीज ध्यान रखिए। फिर मैं हमेशा अपने बच्चों से कहती हूं कि आप कितने भी उम्र के पहुंच जाएं, रिटायरमेंट एज आ जाए, लेकिन एक शौक, एक हॉबी आपके जीवन में सदा दिन बनी रहनी चाहिए। मेरे जितने पुराने विद्यार्थी हैं, अब तो यूपीएससी में भी सेलेक्ट हो गए हैं, जहां कहीं भी हैं, जब कभी कई साल बाद वो मिलते हैं तो मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ कि अभ्युदय आप गाना बहुत अच्छा गाते थे, क्या अभी भी आप गाना गाते हैं? तो जब बच्चे कहते हैं कि हाँ उनका शौक अब भी बरकरार है तो मुझे बेहद खुशी होती है, क्योंकि आपकी हॉबी, आपका शौक जो है वो तनाव दूर करने का सबसे बेहतरीन विकल्प है। आप देखिए, आप पेंटिंग कर लीजिए, आप ड्राइंग कर लीजिए, आप डांस कर लीजिए, आप गाना गा लीजिए, आप कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं आप वो भी काम कर सकते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई, आपको कुकिंग अच्छी लगती है आप वो कर लीजिए, जो काम आपको बगीचे में काम करना अच्छा लगता है, आपको दौड़ना पसंद है, जो काम आपको पसंद है वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। एक छोटी सी कविता है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, लेकिन जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आप देखिए, कई बार आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए हम कभी असफल हुए तो शायद वो असफलता टेम्परेरी हो और वो असफलता आपको कहीं भविष्य में उससे बड़ी सफलता दिलाने वाली हो। एपीजे कलाम साहब का नाम हम सब जानते हैं, सारे लोग। 1958 में जब कलाम साहब मद्रास से पास आउट हो रहे थे तो उनको बड़ा शौक था कि वो पायलट बने, और वो जो देहरादून की एयरफोर्स एकेडमी है वहां गए भी। उस एकेडमी में 24 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था लास्ट राउंड इंटरव्यू के लिए, और सीट कितनी थी? केवल 8। जब इंटरव्यू के रिजल्ट आए तो कलाम साहब जो थे उनका स्थान 9वां था, 9th पोजीशन। आपको पता है वो सेलेक्ट नहीं हुए। आप सोच सकते हैं, आप उनकी आत्मकथा पढ़िए, उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो दौर मेरे जीवन का सबसे निराशाजनक दौर था। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए उस समय वो धैर्य छोड़ देते, सहनशीलता खत्म हो गई होती, तो शायद गांव वापस लौट जाते और पिता जो नाव चलाते थे शायद वही काम करने लगते। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, ये चीज में असफल हुआ, नहीं बन सका पायलट तो क्या, लेकिन मैं किसी और फील्ड में अपना भाग्य आजमा लूंगा। और बाकी चीज इतिहास है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से इस देश के परमाणु परीक्षण के 2 बार वो प्रणेता बने, कि उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी थी। फिर इसरो में नाम कमाया और राष्ट्रपति के तौर पर मुझे नहीं लगता कि उनका कार्यकाल जितना सुनहरा रहा होगा, इतना और किसी का कार्यकाल था। ये छोटा सा उदाहरण हमें यह सीख देता है कि एक असफलता हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। एक असफलता हमें कभी ये मजबूर नहीं कर सकती कि आगे रास्ता बंद है। अपने मन में हर बार ये बात दोहराइए, हर दिन प्रतिदिन, कि यदि मान लीजिए मैं असफल हो भी गया तो मुझे तुरंत दूसरा विकल्प देखना है, मुझे तुरंत दूसरा रास्ता देखना है, और मैं आगे ही बढ़ने के लिए बना हूं। कोई बात नहीं, यदि ये रास्ता मेरे लिए नहीं था, कोई और मंजिल, कोई और रास्ता मेरे ही लिए बना हुआ है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि विद्यार्थी होने के नाते 10वीं बोर्ड की परीक्षा एक सीढ़ी मात्र है कक्षा 11वीं में पहुंचने की। जब आप 10वीं में अच्छा करते हैं तो अपने मन के मुताबिक आपको विषय चुनने की छूट मिलती है, पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, कॉमर्स पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है। फिर जब आप 12वीं में अच्छा करते हैं, वो मात्र एक सीढ़ी है कॉलेज तक पहुंचने के लिए। जब आपका कॉलेज में दाखिला हो गया, फिर वहां आपको अगली जंग वहीं लड़नी है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, लगभग 15-20 दिन पहले आया था कि आईआईटी मुंबई में 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कैंपस के थ्रू जॉब नहीं मिली। आप सोच सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जब इनका जेई क्वालिफाई हुआ होगा और मुंबई आईआईटी के कैंपस में जब इन्होंने कदम रखा होगा तो इन्हें लगा होगा हमने जग जीता, सारा संसार मेरे कदमों पर है, माता पिता ने कहा कितनी नई मिठाइयां बांटी होंगी। लेकिन आप सोचिए, उस कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी, एक दो नहीं 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें कैंपस के थ्रू जॉब नहीं मिला। ये साबित करता है कि केवल अच्छा कॉलेज, केवल 95 के अबव परसेंटेज इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित है। आपको बेटा हर दिन लड़ाई लड़नी है, हर दिन आपको समस्या का समाधान ढूंढना है और उस समस्या का मैं सामना कैसे करूं इस बात की तैयारी करनी है। जितने नामचीन आप लोगों लोग आपको मिलेंगे, आपने जिनके बारे में भी सुना है, अपने आसपास के लोगों से पूछ लीजिए। एक भी व्यक्ति आपको इस जीवन में ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं अपने जीवन में कभी असफल नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति नहीं। लेकिन क्या वो हार माना उस व्यक्ति में और जो घर पर बैठ गया उस व्यक्ति में? केवल यही एक फर्क है कि उसने असफलता से सबक सीखा, अपनी कमजोरियों अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया। वे मान लीजिए कि आज मैंने कोई परीक्षा दी और मैं असफल हो गई, तो मेरा पहला काम ये नहीं होना चाहिए कि मैं दो दिन उस बात का शोक मनाऊं कि ये मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तुरंत इस बात की जिम्मेदारी उठानी है कि मुझसे गलती कहां हुई, मैं कहां गलत थी, क्या मेरी तैयारी में कोई दोष था, क्या मैंने उतना समय नहीं दिया, क्या मैं लापरवाह थी, क्या मैं बेपरवाह थी, क्या मैंने नोट्स ठीक नहीं बनाए थे, क्या टीचर्स ने जो टिप्स दिए थे परीक्षा केंद्र में जाते समय के लिए, क्या मैंने उसे ठीक से फॉलो नहीं किया था। मुझे अपनी कमी को पहचानना है। और बेटा, इस बात की श्योरिटी है कि जब आप अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपका पूरा परिवार आपके साथ खड़ा होगा। आप एक बार खुले दिल से अपने माता पिता से बोलकर देखिए कि अगली बार निश्चित है जो अब आया है मैं इससे बेहतर करूंगा। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उनका बच्चा उन्हें झूठा दिलासा दे, झूठी उम्मीदें जगाए, ये कह दे कि सब अच्छा है। आप देखिएगा ना, अब 95 हम जानते हैं, कई बार मैं स्कूल में देखती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो 10 घंटा टेबल पर बैठा रहता था, लेकिन वो पढ़ता कितनी देर था? क्या उसका मन पूरी देर 10 घंटा पढ़ने में लग रहा था? माता पिता होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे के शेड्यूल पर नजर दौड़ाइए। आप उससे पूछिए कि पिछले हफ्ते तुमने कितना पढ़ा, जो पढ़ा वो समझ आया? मैं देखती हूँ कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जब उनसे क्लास में पूछा जाता है कि क्या आपको समझ में आया, हाँ में सिर हिलाते हैं। मैंने देखा कितने बच्चे ऐसे जो कभी कोई डाउट लेकर नहीं आते। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा हर दिन पढ़ रहा है उसे दुविधा तो होगी ना, परेशानी तो होगी ना कि ये चीज समझ नहीं आई थी। लेकिन यदि कोई बच्चा साल भर में एक भी दुविधा लेकर नहीं आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो घर पर कितना पढ़ रहा होगा, कितना लिख रहा होगा। जो बच्चा आज का आज घर में जाकर पढ़ रहा है, निश्चित है वो अगले दिन आकर कहेगा कि आपने जो ये कल पढ़ाया था ये मेरी समझ नहीं आया। तो कृपया मुझे फिर से समझा दीजिए, या मैंने 10 लाइन समझ ली थी, ये 11वीं लाइन मेरी समझ से बाहर थी, क्या आप इसे मुझे फिर से समझा देंगे? इस संसार का कोई टीचर ऐसा नहीं है जो मना कर दे कि नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा। टीचर हैं ही इसीलिए, हम हैं ही इसीलिए कि आपको दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार समझाते ही चले जाएंगे। ये आपका धर्म बनता है विद्यार्थी होने के नाते कि अपने गुरुजन से तब तक पूछते रहिए जब तक उस समस्या का निराकरण समाधान आपको नहीं मिल जाता। मैं जानती हूं बेटा, आप 10% एफर्ट लगाएंगे, जो आपके आसपास के लोग हैं वो 90% एफर्ट लगाएंगे और इस तरह से वो मिलकर कुल 100% एफर्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आया है, पूनम शेखर मैम पूछती हैं कि 10वीं पास होने के पश्चात बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं विषय चयन करने में, कृपया विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें, क्या विषय में स्कोर से आकलन करें या विषय में रुचि अनुसार। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप यकीन मानिए, मैं हमेशा ये बात अपने विद्यार्थियों से कहती हूँ, विषय चुनकर करियर मत चुनिए। आप पहले ये करियर चुनिए, फिर उसके अकॉर्डिंग विषय चुनिए। कैसे? कुछ लोगों को शायद बात हास्यास्पद लगे, लेकिन मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि आने वाले 40 साल जो काम कर मैं बोर ना हूं, आने वाले 40 साल जिस काम करते समय पहले दिन जाने में मुझे जो एक उत्साह उमंग मेरे मन में थी, रिटायरमेंट के दिन तक मेरे अंदर वही उत्साह, वही उमंग, वही रुचि बनी रहे, तो मुझे वही करियर अपनाना है। मुझे 19 साल हो गए डीपीएस में, मैं पहली अप्रैल 2006 को जिस दिन जैसे गई थी, मैं आज भी वैसे ही जाती हूँ। मेरी ऊर्जा में, मेरी उत्साह उमंग में 1% की भी कमी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों को देखते ही अंदर मेरे एक अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। बेटा, आप वो करियर चुनिए जिसको चुनकर आपको 40 साल काम करते में आपका आत्मविश्वास, आपका उत्साह बना रहे, और उस करियर के लिए कौन सा विषय जरूरी है फिर विषय चुनिए। हमारे यहाँ बच्चे कैसे करते हैं, पीसीएम ले ले, मैथ्स तेरा अच्छा है। बच्चा पढ़ रहा है पीसीएम, 12वीं है, वो इंजीनियरिंग का एग्जाम भी दे रहा है एंट्रेंस, लेकिन कहता है मैडम मुझे इंजीनियर बनना नहीं था। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि पीसीएम ले लो, पीसीएम लेने से बहुत सारे विकल्प तुम्हारे पास रहते हैं, मैंने इसलिए ले लिया। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग 10 साल तक एक जगह काम करते हैं और फिर उनको लगता है मैं ऊब गया, मुझे बोरियत हो गई इस काम को करते करते, और अब मैं ये काम नहीं करना चाहता, तो वो लोग स्विच कर लेते हैं अपनी नौकरी, अपनी जॉब बदल लेते हैं। क्यों? तो जो एक जगह टिक कर नहीं रह पाया, क्या गारंटी है कि वो अगले 10 साल के बाद वो नौकरी दूसरी नहीं बदल लेगा? तो बेटा, हमेशा पहले अपने रुचि का काम तलाशिए, और जब आपको काम मिल जाएगा तब आप सोचिए कि ये काम तो मैं ताउम्र कर सकता हूं, मुझे कभी बोरियत नहीं होगी, और फिर उस काम के लिए जो विषय जरूरी है उन विषयों का चुनाव करिए और फिर अपने को तैयार करिए। उन विद्यार्थियों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है जिन्हें ये नहीं पता होता कि आगे जाकर उन्हें क्या करना है। लेकिन नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। मेरी पीढ़ी जब थी, हम पढ़ रहे थे उस समय, बेटा बहुत कम विकल्प थे हमारे सामने, नौकरी के भी और पढ़ाई के भी। लेकिन आज का दौर ऐसा है जब अंतहीन विकल्प है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद तो आप एक सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ सकते हैं, एक आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप साथ में अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आपके पास अथाह विषयों का विकल्प है, आपकी रुचि जिसमें है आप वो चुन लीजिए। तो आप पहले अपना काम ढूंढिए कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें काम करते समय आपका मन रमा रहेगा और आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्यों इस काम में हूं, और जब वो काम आपको सुहाने लगेगा उसके हिसाब से आप अपना विषय चुनिए। सेशन खत्म होने का समय आ रहा है, और एक छोटी सी बात अपने प्रिय विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगी कि यदि मान लीजिए आपका परीक्षा परिणाम आपके मन के मुताबिक नहीं आता है, तो उसके लिए दो पंक्तियां हैं कि ये आसमां छिन गया तो क्या, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ना छोड़ देंगे। और याद रखिएगा कि आपकी उड़ान को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बस अपने पंखों को इतना मजबूत बना लीजिए कि वो कभी थकान महसूस ना करें। खूब आत्मविश्वास भर लीजिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, और मेरी, हमारे पूरे समाज की, आपके माता पिता की, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ये याद रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं और कल भी आप हमें अपने साथ ही पाए। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको इतना प्रेरणा दे कि आप अपने जीवन में कभी निराश ना हो। साथ ही मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे मन में जो विचार थे वो आपके सामने रखने का मुझे ये अवसर मिला।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।